गैया चरने के लिए वन में जाती है और उस बछड़े को दूध पीना है, भूख भूख लगी है और बछड़ा अपनी मां के अलावा किसी का दूध नहीं पीता है। जैसे वह भूखा बछड़ा अपनी मां गाय की राह देखता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपके दर्शन की राह देख रहा हूं। हे प्रभु, जिस प्रकार एक पतिव्रता पत्नी का पति परदेश गया हो और यहां समाज के लोग, संसार के लोग उसे बहुत दुखी करते हैं, तब वह पतिव्रता नारी अपने परदेश गए हुए पति की राह देखती है, कब वे आएंगे और मुझे सुख प्रदान करेंगे। जैसे वह पतिव्रता नारी अपने परदेश गए हुए पति की राह देखती है, ऐसे ही प्रभु मैं आपकी राह देख रहा हूं, कब आप मुझे दर्शन देंगे। वित्रासुर के मन में भावना उठी कि प्रभु ये तो निश्चित है कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप तो बड़े बड़े लोगों को दर्शन देते हो, साधु महात्मा भक्तों को दर्शन देते हो, मैं तो असुर हूं, जन्मजात आसुरी स्वभाव है मेरा, यह तो निश्चित है कि आप मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे। परंतु अंत में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, भले आपका दर्शन न हो परंतु आपके भक्तों का दर्शन मुझे हो। मामोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मा जदारगेहे श्वासद्चित्तस् न नाथ भूया श्वासद्चित्तस् न नाथ भूया। हे प्रभु, माम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, बड़े बड़े भक्तों का संतों का संग प्रदान हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप मुझ पर कृपा करें, अपने कर्म के वश में होकर जो लोग अपना कर्म भोगते हैं और माया में फंसे हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर केवल आपके भक्तों का संग करूं, आपके भक्त की संगति करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद। इतना कह के वित्रासुर इंद्र को कहते हैं, मुझे मार डालो, मुझे मारो। वित्रासुर के कहने पर इंद्र अपने वज्र से वित्रासुर का गला काट देता है। वित्रासुर अंतिम समय में इंद्र को कहता है कि इंद्र, मैं मरना चाहता हूं और तुम स्वर्ग चाहते हो ना, तुम स्वर्ग चाहते हो, मुझे मारकर तुम स्वर्ग प्राप्त कर लो, परंतु याद रखना मैं भले मर रहा हूं परंतु मर कर भी मैं जीत रहा हूं। तुम मुझे मार डालोगे और मुझे मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? इंद्र, मुझे मारकर तुम्हें तुच्छ स्वर्ग प्राप्त होगा, वो भी कितने समय के लिए, एक ना एक दिन तो उसे छोड़ना होगा, परंतु मैं मर कर भी विजय प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मर कर मैं वैकुंठ भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा, जिसे छोड़कर कभी वापस नहीं आना पड़ता, मर कर भी मैं जीत जाऊंगा, मार डालो मुझे। इस प्रकार वित्रासुर की मृत्यु होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वित्रासुर को मारने के लिए 100 साल तक इंद्र ने जब अपना वज्र चलाया तब जाकर वित्रासुर का सिर टूटा, इतना विकराल शरीर था। परंतु परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जन्म से इतना बड़ा असुर था, रजस तम स्वावस्य ब्रह्म वित्रस्य पापमन नारायणे भगवती कथम आसी दृढ़ामति। जन्म से असुर था, वो भी आसित कुल बने, और वह भी वह संग्राम में युद्ध में था। युद्ध में स्वाभाविक सबको क्रोध होता है, आसुरी शरीर, आसुरी स्वभाव, असुर का शरीर, लेकिन फिर भी अचानक भगवान की याद क्यों आ गई? तब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं परीक्षित, वास्तव में यह वित्रासुर पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कहते हैं एक समय की बात, शूरसेन नाम के देश में चित्रकेतु नाम के राजा रहते थे। उसकी 1000 पत्नी थी, विश्वास नहीं होगा परंतु भागवत प्रमाण है। राजा चित्रकेतु की 1000 पत्नी, बहुत बड़ा आश्चर्य, परंतु उससे भी बड़ा आश्चर्य 1000 पत्नी होने के बाद भी एक भी संतान नहीं हुई। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि घूमते घूमते चित्रकेतु के वहां पर आए उपदेश देने के लिए, परंतु अंगिरा जी कुछ उपदेश दे उसके पहले चित्रकेतु ही दोनों हाथ जोड़कर अंगिरा जी के चरणों में गिर गया, प्रभु आप मेरे पर कृपा करें, मुझे पुत्र चाहिए। अंगिरा जी ने सोचा कि जब तक इसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक उपदेश धारण नहीं करेगा। अंगिरा जी ने एक चरु बनाया और चरु चित्रकेतु को दिया। चित्रकेतु ने उस चरु को अपनी पत्नी, सबसे बड़ी पत्नी कृतदूती को खिलाया। कृतदूती के घर में बालक, 9 महीने के बाद बालक का जन्म। राजा चित्रकेतु प्रसन्न हुए, स्वस्ति वाचन कराए, ब्राह्मण ब्रह्म भोजन कराए, परंतु पुत्र का जन्म होते ही पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ता गया और पुत्र के साथ साथ पुत्र की मां कृतदूती के साथ भी प्रेम बढ़ता गया। और बाकी की 999 रानी जो थी वो दुखी हो गई कि चित्रकेतु केवल कृतदूती जिसका पुत्र है उसे ही प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते हैं, अब क्या करें। 999 रानियों ने मिलकर मीटिंग की कि हम कैसे भी करके पुत्र को मार डालेंगे तब सब ठीक हो जाएगा। और इतनी महामुसीबत, इतने समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अरे सभी रानियों ने प्लान बनाया, भोजन में विष डालकर उस पुत्र को खिला देंगे। दूसरे दिन 999 रानियों के द्वारा पुत्र को विष खिलाया गया, पुत्र की मृत्यु हो गई। कृतदूती को पता चलने पर विह्वल हो गई, दुखी हो गई, और राजा चित्रकेतु जैसे मूर्छित होकर एक हाथी, एक गजराज गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर गया, मूर्छित हो गया। बहुत विलाप किए, बहुत विलाप किए, पुत्र को जगाते हैं, बेटा उठ जा उठ जा, पुत्र को बारंबार जगाते हैं परंतु फिर भी उठता नहीं। पूरे राज्य में शोक छा गया। उसी समय अंगिरा जी ने सोचा कि अब प्रवचन करने का योग्य समय आ गया है, क्योंकि जिसका हृदय कोमल होता है उसी के हृदय में उपदेश टिकते हैं, और जब किसी के जीवन में दुख आता है तो उसका हृदय कोमल हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे भारत में जब किसी की मृत्यु होती है तब गरुड़ पुराण बिठाया जाता है, कारण यही है कि मृत्यु हुई है इसलिए हृदय कुछ कोमल हुआ है। तो गरुड़ पुराण सुनकर, अब जो चले गए वो तो चले गए परंतु सुनने वालों का तो कल्याण होगा। तो अंगिरा जी ने सोचा राजा को उपदेश देने के लिए योग्य समय आ गया है, परंतु अंगिरा जी ने सोचा अकेले काम नहीं बनेगा इसलिए साथ में नारद मुनि को ले लिया। अंगिरा जी और नारद ये दोनों आए, चित्रकेतु को उपदेश दिए, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए, और चित्रकेतु उस उपदेश को सुने, परंतु फिर भी चित्रकेतु पूर्ण शरणागत नहीं हुए। अंत में नारद मुनि की कृपा से वह बालक जीवित हुआ कुछ देर के लिए। जैसे ही जीवित हुआ तो चित्रकेतु ने कहा बेटा बेटा, तो बालक ने कहा दूर खड़े रहो, क्या बेटा बेटा कर रहे हो? तुम मुझे बेटा कर रहे हो, पिछले 10 जन्म में मैं तुम्हारा बाप बन चुका हूं, बेटा बेटा लगाए रखे हो। तो लड़का उपदेश देने लगा, और जब उस लड़के ने उपदेश दिया तब चित्रकेतु का हृदय पलट गया, पवित्र हो गया। पता है संसार में बड़े बड़े लोगों से की बात को लोग नहीं सुनते, परंतु अपने पुत्र की बात सब लोग सुनते हैं। और अंत में फिर वह लड़का मर गया चित्रकेतु, घर बार छोड़कर भगवान शंकरषण की उपासना किए। भगवान शंकरषण ने दर्शन दिया और भगवान की कृपा से चित्रकेतु को दिव्य विमान प्राप्त हुआ। उस विमान में बैठकर चित्रकेतु घूमते थे। एक बार उस विमान में उड़ते उड़ते चित्रकेतु भगवान शिव जी के धाम कैलाश में पहुंचे और उस कैलाश लोक में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को गोद में बिठाकर कई लोगों को भागवत कथा सुना रहे थे। वैसे तो शिव जी और चित्रकेतु ये दोनों साख्य हैं, दोनों मित्र हैं। तो मित्रता के भाव में अपने विमान को थोड़ा नीचे लिया और नीचे लेकर ये चित्रकेतु हंसते हुए कहने लगे, लो ये संसार के गुरु बनकर बैठे हैं और प्रवचन करते समय पत्नी को गोद में बिठाए रखते हैं, क्या इसे गुरु कहा जाता? अरे प्रवचन करो तो करो, पत्नी को बाजू में बिठाओ, जो काम गार्डन में जाकर करना चाहिए ये काम भागवत कथा में बैठकर करते हैं। इस प्रकार से चित्रकेतु बोले। शिवजी ने सुना तो शिवजी हंसने लगे, कौतुक मजाक कर, परंतु पार्वती से नहीं रहा गया। पार्वती ही क्रोधित होकर कहने लगी कि हमको उपदेश देने के लिए आप ही हो, जगत में और कोई है ही नहीं हमको समझाने वाला। हमारे पति की कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, नारद आते हैं, ये किसी को तकलीफ नहीं है, आपको क्या तकलीफ है? आपने असुरों की तरह काम किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम असुर हो जाओ। दे दिया श्राप। चित्रकेतु अपना विमान नीचे उतारे और नीचे उतरकर विमान से उतरकर अपने दोनों हाथ पार्वती और शिवजी के सामने जोड़कर कहते हैं कि मैं आपके चरणों में क्षमा मांग रहा हूं। मैं क्षमा इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि तुम अपने श्राप को वापस खींच लो। आपके मुख से निकल गया मैं असुर बनूंगा तो आपके श्राप को मैं शिरोधार्य करता हूं। आपकी यही आपकी इच्छा है मैं असुर बनूं, बन जाऊंगा, परंतु मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि हृदय से कहता हूं कि मेरा कोई यह इरादा नहीं था कि आपको दुखी करूं। मैं तो मजाक में कौतुक में साक्ष्य भाव में कह रहा था। हे माते, सदैव आप पूजनीय हो, मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूं, आप अपना क्रोध दूर करें। इतना कह के चित्रकेतु अपना विमान लेकर चले गए। परंतु उसके बाद शिवजी ने जो उद्गार अपनी पत्नी को कहे हैं, उस भरी सभा में शिवजी ने यह भी नहीं देखा कि एकांत में जाकर इसे डांटू। भरी सभा में शिवजी अपनी पत्नी पार्वती को डांटने लगे। वास्तव में एक पति को चाहिए कि पत्नी के द्वारा यदि गलत काम हो जाए तो तुरंत उसे डांट कर ठीक करें। चित्रकेतु भगवान के परम भक्त है, भगवान का दर्शन करके आए हैं, भगवान से आशीर्वाद लेकर आए हैं, उस भक्त को श्राप दे देना बहुत गलत कार्य था, बहुत बड़ा अपराध था। और शिव जी ने क्रोध में आकर उसी समय लोगों के बीच में पार्वती को कहा, देखा ना पार्वती, तुम क्या समझती हो कि तुम उसे श्राप देकर तुम बहुत बड़ी हो? अरे तुम नहीं जानती उसका प्रभाव क्या है। चित्रकेतु यदि चाहते तो उसी समय तुम्हें जलकर भस्म कर सकते थे। साक्षात शंकरषण का आशीर्वाद लेकर आए थे, वे चाहे तो खड़े खड़े ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते थे, तुमको उसी समय श्राप देते समय जलाकर भस्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी बिचारे दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारे चरणों में प्रार्थना क्षमा मांग रहे थे। इतना सामर्थ्य व्यक्ति जिसके पास पूर्ण सामर्थ्य था वो तुमसे विनय कर रहा था। ये है भगवान के भक्तों का स्वभाव। देवी देखा विष्णु के भक्त कैसे होते हैं, देख लिया ना तुमने? भगवान के भक्त की महिमा शिवजी जानते हैं। भक्त का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। चित्रकेतु चाहते तो पार्वती का कुछ भी कर सकते थे, मार सकते थे, परंतु भक्त कभी किसी को दंड नहीं देते हैं। भक्त केवल कृपा देना जानते हैं, क्षमा करना जानते हैं। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों की महिमा गाई और तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान के अनेक अनेक भक्त हुए, परंतु उनमें प्रहलाद महाराज का स्थान अद्वितीय है। प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दीति के गर्भ से दो असुरों का जन्म हुआ, एक का नाम था हिरणाक्ष और एक का नाम था हिरणाकश्यपु। ये हिरणाक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने सूकर रूप धारण किया और सूकर रूप लेकर भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरणाक्ष का वध किया। हिरणाक्ष का वध होने पर हिरणाक्ष का जो छोटा भाई था हिरणाकशिपु, वो भगवान विष्णु का दुश्मन हो गया। विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, और वह जानता था विष्णु को मारने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति प्राप्त करने के लिए हिरणाकशिपु जंगल में तपस्या करने के लिए गया। हिरणाकशिपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम अप्रतिदंदम एक राजम यदित सत। अमर बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए तपस्या करने के लिए गया, और उग्र तपस्या। हमारे इतिहास में हिरणाकशिपु जैसी उग्र तपस्या किसी ने नहीं की आज तक। कैसी तपस्या थी तो कहते हैं सतेपे मंदर दोरण्याम तप परम दारुणाम। परम दारुण तपस्या प्रारंभ की। ऊर्ध्व बाहु नभो दुष्टि, अपनी दोनों भुजा ऊपर की और अपनी दोनों आंख ऊपर करके पादांगुष्टा शितावनी, और अवनी पृथ्वी के ऊपर केवल अंगूठे के ऊपर खड़ा रह गया। अंगूठे के ऊपर खड़ा रहकर दोनों हाथ ऊपर करके आंखें ऊपर करके आप 5 मिनट खड़े रहिए, नहीं रहा जाएगा। इस प्रकार हिरणाकशिपु 5 मिनट या 5 साल नहीं, 36,500 वर्ष तक इस प्रकार से वे खड़ा रहा। 36,500 वर्ष तक हिरणाकशिपु अपने अंगूठे के ऊपर दोनों हाथ आंख ऊपर करके, और उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। हिरणाकशिपु ने कहा प्रभु आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है, तुम्हें कैसे अमर कर पाऊंगा, और कुछ मांगो। तब हिरणाकशिपु ने अपनी बुद्धि लगाई, ये डायरेक्ट तो अमर होने का वरदान नहीं दे रहे हैं, परंतु ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे मैं अमर ही हो जाऊंगा। तब हिरणाकशिपु ने ब्रह्मा जी को कहा एक काम करो, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि न तो मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, इतना कह के ब्रह्मा जी चले गए। हिरणाकशिपु सबसे पहले इस पृथ्वी लोक में जितने भी राजा महाराजा थे सब के साथ युद्ध करके सबको बंदी बना लिया। कहते हिरणाकशिपु युद्ध करने के लिए जाता और राजा उसके सामने युद्ध करने के लिए आते, परंतु जैसे ही राजा युद्ध करने के लिए आते हिरणाकशिपु कहते रुको रुको रुको, ब्रह्मा जी ने जो सर्टिफिकेट दिया था दिन में न मरो, रात में न मरो, मनुष्य से न मरो, पशु से, अंदर न बाहर, अस्त्र से न शस्त्र से, ये सर्टिफिकेट राजा को दिखा था। ब्रह्मा जी ने यह सर्टिफिकेट दिया है, राजा सर्टिफिकेट सुनकर देखकर ही चरणों में गिर जाता कि इसे कौन मार सकता है, कोई नहीं, सब लोग शरणागत। और जितने भी साधु संत भक्त थे सबकी साधना बंद करवाई, यज्ञ बंद करवाए, गायों की हत्या करने लगा। इस प्रकार पाखंड अत्याचार कर, कहते हैं केवल पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के नीचे के लोग, पृथ्वी के ऊपर के लोग, स्वर्ग लोक तक सब को अपना बंदी बना लिया। ये इंद्र देवता को तो अपने घर पर झाड़ू लगवाता था, ये 33 करोड़ देवी देवताओं को ये हिरणाकश्यप अपने घर पर बंदी बनाकर रखा था। भागवत प्रमाण है, कहते हैं जीते त्वये केन जगत त्रयम विभो। हिरणाकश्यप जब अपनी भौं तरेरता था, अपनी दृष्टि तिरछी करता था, 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों में गिर जाते थे। दोनों हाथ जोड़कर हिरणाकश्यप महाराज की जय। कहते नारद मुनि जो 2400 घंटा वीणा पर भगवान का नाम लेते रहते हैं, वह भी जब हिरणाकश्यप के सामने आते थे तो इतना ही कहते थे, हिरणाकश्यप महाराज की। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, मरने से तो अच्छा है महाराज की जय बुलाना। जब गरज हो तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हिरणाकश्यप तीनों लोकों में अपना पाखंड फैला दिया और अत्याचार, सभी देवता एकत्रित होकर भगवान की शरण में गए। अब हिरणाकश्यप शरण में जाने देने वाला नहीं था, इसलिए वे जहां थे वहीं पर खड़े रहकर भगवान को पुकारा। और भगवान को पुकारते ही विनिंद्रा वायु भोजना, देवताओं ने सोना छोड़ दिया विनिद्रा, और वायु भोजना केवल वायु का भोजन करके अर्थात खाना बंद कर दिया। जैसे ही देवताओं ने सोना और खाना बंद किया, भगवान की भक्ति शुरू की। दूसरे ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान की वाणी प्रकट हो गई। भगवान को प्रकट करने के लिए इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है, और उसमें भी भोजन। कहते भोजन के ऊपर क्यों इतना बोलते हैं, ज्यादा भोजन करेंगे तो भजन कम हो जाएगा। भोजन कोई गलत नहीं है, परंतु जितना भोजन है उतना भजन भी होना चाहिए। और भगवान उसे बहुत पसंद करते हैं जो कम भोजन खाता है और ज्यादा भजन करता है। भगवान की बात छोड़ दी, हम भी मान लो आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, शोरूम में जाते हो तो पहला प्रश्न हम क्या पूछेंगे कि ये कम से कम पेट्रोल खाए और ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर चले ऐसी मोटरसाइकिल दिखाइए। हम ऐसी मोटरसाइकिल को लेंगे जो कम से कम पेट्रोल खाए और ज्यादा से ज्यादा चले। तो भगवान भी देखते हैं जो कम से कम भोजन करता है और ज्यादा से ज्यादा भजन करता है उसे अपने धाम में रख लेते हैं। तुरंत यहां पर कहते हैं विनिद्रा वायु भोजना, भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान ने कहा डरो मत मां वेष्ट विबुदा श्रेष्ठ सर्वेशाम भद्रमस्तु, वह सबका कल्याण हो, सबका भद्र हो। और गायों की, ब्राह्मणों की, वेदों की प्रति जो ईर्ष्या करता है सवे आसु विनश्यति, वह तुरंत विनाश हो जाता है। तो ये बहुत जल्द मरने वाला है, आप टेंशन मत लो। देवताओं ने कहा कब मरेगा, भगवान ने कहा निर्वेराय प्रशांताय ससुताय महात्मने, प्रशांत महाभागवत स्वसुत अपने पुत्र के प्रति जब यह द्वेष करेगा तब मैं इसे मार डालूंगा। देवताओं ने कहा आप कैसे मारोगे, ब्रह्मा जी ने वरदान देकर रखा है। भगवान ने कहा डरो मत वरोर जीतम, मैं उसके वरदान से ऊपर होकर इसको मार डालूंगा। इस प्रकार भगवान वरदान देकर चले गए। यहां तीनों लोक हिरणाकश्यप के अंडर में है, वश में है, परंतु हिरणाकश्यप के 4 पुत्र, उनमें जो सबसे छोटा था चतवार परम अद्भुता, पूरा जगत हिरणाकश्यप की भक्ति, तीनों लोक हिरणाकश्यप की भक्ति करता है, परंतु हिरणाकश्यप का 5 साल का बालक प्रहलाद अपने पिता की भक्ति न करके विष्णु की भक्ति करता। तब हिरणाकश्यप ने उस प्रहलाद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य कि दोनों पुत्र शंड और अमर की गुरुकुल में भेजा। प्रहलाद एक साल तक गुरुकुल में पढ़ा और एक साल के बाद जब वैकेशन में घर पर आया तो प्राय बालक जब स्कूल से आते हैं तो पिता पूछते हैं, क्या पढ़ाया आपको, आपको क्या अच्छा लगा? तो हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाकर पूछा, बेटा तूने आज तक जो पढ़ा है उनमें से तुझे अच्छी बात कौन सी लगी, पढ़ाई में सबसे अच्छी वस्तु कौन सी लगी? प्रहलाद महाराज ने कहा होगा, पिताजी नहीं पूछेंगे उसमें ही अच्छा है, जवाब दूंगा तो आप फिर जीना मरना हराम हो जाएगा। नहीं बेटा बताओ, सबसे तुम एक साल पढ़े लिखे हो उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, बताऊं? हिरण्याकश्यप ने कहा बताओ। प्रहलाद महाराज ने कहा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदाम समुद्विघ्न धियाम सत्ग्रहात् हितवात्म पातम गृहि मंदकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे असुरों के सम्राट, पिताजी नहीं कहा, प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में कभी हिरण्याकश्यप को पिताजी नहीं कहा, क्योंकि कल आपने सुना पिता उसे कहा जाता है जो अपने पुत्र को भक्त बनाए, ये तो भक्ति से उल्टा विरुद्ध चल रहा है, इसे कौन पिता कहेगा? तो प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते, हे असुरों के सम्राट, हे असुरों के सरदार, हिरण्याकश्यप को भी बुरा नहीं लगा। हिरण्याकश्यप ने सोचा, ये मेरी वैल्यू जानता है, मैं सरदार हूं, मुझे कुछ समझता है। हे असुरों के सरदार, ये घर गृहस्थी की फजीहत में उलझने वाले सदा समूद विघ्न सदा दुखी रहते हैं, ऐसी गृहस्थी को छोड़कर पिताजी हाथ में माला लेकर भगवान का नाम लेकर वृंदावन में चला जाना, ये सबसे अच्छी बात मैं मानता हूं। मैं तो कहता हूं आप भगवान विष्णु के नाम की माला लेकर वृंदावन में चले जाओ। इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप जोर से चिल्लाया, शंड अमर, ये तेरा बाप क्या बोल रहा है, क्या ये सिखाया तुम लोगों ने? शंड अमर ने कहा, प्रभु हमने ऐसा नहीं सिखाया। तो किसने सिखाया? कहते हमने तो ऐसा कभी नहीं सिखाया। अब ध्यान रखो, इस प्रकार से विष्णु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, इसे राजनीति सिखाओ, दाव पेच कैसे करने चाहिए यह सिखाओ। शंड और अमर प्रहलाद को दूसरी बार गुरुकुल में लेकर गए, एक साल गुरुकुल में पढ़ाया, एक साल के बाद फिर से वापस प्रहलाद महाराज आए। माता के घर पर माता ने नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, बाल में तेल डाला, पाउडर लगाया और फिर माता ने पिताजी के रूम में भेजा। फिर से हिरण्याकश्यप, यहां तो नारद मुनि, इसके मूल वक्ता नारद मुनि राजसूय सभा में कहते हैं कि हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, सिर पर हार घुमाहट घुमाया, हिरण्याकश्यप की आंखों में आंसू, पुत्र से प्रेम कर रहा है। कहा, बेटा बेटा जीवन में तुम इतना पढ़े हो, तुम आज तक जो पढ़े हो उसमें सबसे अच्छी बात तुम्हें कौन सी लगती है? प्रहलाद महाराज मन में सोच रहे, मुझे न पूछे तो अच्छा है, लेकिन हिरण्याकश्यप ने पूछा, सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी जानना ही है, हाँ तो जान लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दर्श वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, भगवान विष्णु की नौ प्रकार की जो भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियेत भगवती अद्दा तत्मन्ये रित उत्तमम, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। हिरण्याकश्यप का तो कोई पारावार न रहा, प्रहलाद को उठाकर नीचे पटका, शंड अमर, ये दोनों आए कांपते हुए, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है विष्णु की भक्ति करना यही श्रेष्ठ है, क्या सिखाए तुमने? क्षण अमर करते, माय बाप सरकार, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये जो बोल रहा है न मत, ये हम लोग ने नहीं सिखाया, और हमने बहुत ध्यान रखा है, इस्कॉन के लोग भी नहीं आए हैं, बाहर के किसी लोगों ने भी नहीं सिखाया है, तो ये किसने सिखाया है? नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, सरकार, इसकी जन्मजात भगवान के प्रति मति है, जन्म से ही नैसर्गिक स्वाभाविक विष्णु के प्रति इसका प्रेम है। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सुधरेगा नहीं, देते ये चंदन वने, ये असुरों के असुर रूपी चंदन वन में बबुल का वृक्ष पैदा हुआ है और इसे काट देना चाहिए। हिरण्यकश्यपु नीति कहता है जब उंगली सड़ जाती है तो उस उंगली को काट देना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। इसलिए इस प्रहलाद को मेरी नजर किसे दूर करो, इसे मार डालो। दिग्गजे दंद सुकेश अभिचारा व पातने, प्रहलाद को मारने के बहुत बहुत प्रयास किए गए। कहते दिग्गजे, बड़े बड़े हाथियों के नीचे प्रहलाद को कुचलने का प्रयास, परंतु भगवान की भक्ति में स्थिर उस प्रहलाद को का यह दिग्गज हाथी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दंद सुकेश, हजारों हजारों सर्पों के रूप में प्रहलाद को रखा गया, परंतु स्वर्प सर्प डंक मारते मारते दांत टूट गए, स्फुटंती मणि, उसकी मणि निकल गई, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अभी चारा व पातने, बड़े बड़े पर्वतों से गिराया गया, फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कृत्या उत्पन्न की गई, वह भी प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाए। प्राणों में कहते हैं होलिका के गोद में बिठाया गया, जिस होलिका को वरदान था कि अग्नि नहीं जला पाएगी, परंतु एक भक्त को वे मारने चली थी, इसलिए वरदान भी झूठा हो गया, स्वयं मर गई, परंतु प्रहलाद जीवित रहे। इस प्रकार गर्दानेर भोजने, भोजन में विष डालकर मारने का प्रयास, परंतु प्रहलाद को कोई कुछ नहीं कर पाया। अंत में अंतिम प्रयास, जो सबसे कड़ा प्रयास था, हिरण्यकश्यपु ने अंत में कह दिया कि ये मर नहीं रहा, एक काम करो, इसके शरीर पर पत्थर बांधो, बीच समुद्र में लेकर जाओ, महासागर में, और बीच महासागर में पत्थर बांधकर गिरा, और फिर बीच महासागर में उसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ पत्थर भर देना और उसको गाड़ देना। हिरण्यकश्यपु के कहने पर बीच महासागर में पत्थर बांध कर गिराया। विष्णु पुराण में वर्णन है कि उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर वृक्ष लादे गए, गाड़ दिया प्रहलाद को। और आज तक प्रहलाद ने बड़े बड़े मारने के प्रयास किए गए, प्रहलाद को पता भी नहीं चला, परंतु इस प्रयास में प्रहलाद सोच में पड़ गए, अब यहां से कैसे निकला जाए। प्रहलाद भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरी रक्षा करें। उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद के शरीर के अंदर प्रकट हुए और प्रहलाद को जो बांध कर रखा था रस्सी के बंधन तोड़ दिए, और प्रहलाद उस बड़े बड़े प्रहलाद को तोड़ते हुए फोड़कर महासागर के ऊपर आए। और हिरण्यकश्यपु तो निश्चिंत होकर सो गया था, परंतु सुबह उठकर देखा तो प्रहलाद आकर बैठे हैं। हिरण्यकश्यपु तो दुखी हो गया, और आज हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित है, प्रहलाद को पूछ रहा है कि हे प्रहलाद, ये तीनों लोग मेरे भय से भयभीत होता है, तीनों लोग मेरा नाम सुनकर कांपते हैं, और तेरे में ये शक्ति कहां से आ रही है, तेरे में शक्ति कहां से आ रही है, तुझे मारने का इतना इतना प्रयास, लेकिन फिर भी तू मर क्यों नहीं रहा है। सुरदास जी की भाषा में इस प्रसंग को सुरदास जी बहुत सुंदर प्रकार से गाते हैं। हिरण्यकश्यपु क्षण अमर प्रहलाद को कहते हैं कि तू मर क्यों नहीं रहा है, तुझे मारने के बहुत प्रयास किए और बहुत बहुत प्रयास करके हम हार गए।
हम तो बहुत बाती पछिहारे, हम तो बहुत बाती।
मारने का प्रयास किया, मारते मारते हार गए, परंतु ये भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा।
हम तो बहुत बाकी बचे हारे, हम तो बहुत बाकी बचे हारे, इन तो
कर रहा है, कौन तुझे बचा रहा है?
ताको कौन बचावत आई,
तुझे कौन बचा रहा है?
सो
कृष्ण ने पूछा कि तुझे इतना इतना मारने का प्रयास, फिर भी तू बच रहा है, कौन तुझे बचा रहा है? तो प्रहलाद कहते हैं,
मंत्र जंत्र
ये हरि नाम, भगवान का नाम ही मेरी रक्षा कर रहा है। अच्छा, तू जिसका नाम तेरी रक्षा कर रहा है वो कहाँ है, कहाँ बैठकर तेरी रक्षा कर रहा है? तो प्रहलाद कहते हैं,
मंत्र जंत्र में रे हरि नाम, घट में जा को विश्राम,
पिताजी घट घट में है, सभी जगह पर है,
जहां तहां सोई परत सहाय,
यही मेरी सब जगह पर रक्षा कर रहे हैं।
तासो
का नाम मेरी रक्षा कर रहा है। हिरण्याकश्यप ने पूछा, कहां है तेरा विष्णु, बता तेरा विष्णु कहां है, आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है। आज तक तू विष्णु 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 करते आ रहा है, कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, प्रभु पिताजी अत्र तत्र सर्वत्र, मेरे विष्णु मेरे भगवान सभी जगह पर है। हिरण्याकश्यप उंगली बताकर कहता है, क्या इस खंभे में है तेरे विष्णु? प्रहलाद महाराज देखते हैं खंभे की ओर, प्रहलाद महाराज के मुख से निकल गया, हां प्रभु, अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पर, इस खंभे में भी भगवान विष्णु है। तो हिरण्याकश्यप कहता है, आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है। यह कह के हिरण्याकश्यप अपनी मुष्टिका वज्र जैसी मुष्टिका का प्रहार धीरे धीरे उस खंभे के पास पहुंचता है और अपनी सारी शक्ति लगाकर जैसे ही उस खंभे को मारने का प्रयास, उसी समय भगवान नरसिंहदेव उस खंभे को तोड़कर प्रकट हो गए। भयंकर शब्द हुआ और उस शब्द से ब्रह्मांड कांपने लगा, ब्रह्मा आदि समस्त देवता समझने लगे प्रलय होने लगा है। तब देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए, ऋषि मुनियों के बुझे हुए यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में इकट्ठी हुई गायों का रक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान अपने हाथ में गदा लेकर हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए तैयार। हिरण्यकश्यपु के पहले सभी अनुचरों को मारते हैं और तत्पश्चात धमाधार हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध होता है। भगवान का अद्भुत शरीर कान खड़े पहाड़ के गुहा के समान उनकी नासिका है, भयानक मुख है, तपाए सोने के समान प्रचंड उनकी आंख है, विकराल दांत है, तलवार के समान लपलपाती हुई जीवा है, विशाल छाती कमर पत्ती चंद्रमा की तान चमचम चमन चमकते हुए रोंगटे हैं, सेना के समान हजारों शस्त्र भुजाए हैं, नाखून शस्त्र के समान आकाश को झुकाने वाला दीर्घ शरीर है, गर्दन के बाल हिल रहे हैं, आकाश के बादल बिखर रहे हैं, ग्रह की कांति हीन हो रही है। भगवान नरसिंह देव के सामने कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब लोग देखकर भयभीत हो गए। भगवान के श्वास के धक्के से समुद्र खोलने लगा, भगवान सिंह नाद करने लगे, दिग्गज डोल गए। भगवान श्री नरसिंह देव के पैरों की धमक से यह धरणी डोलने लगी। उसी समय हिरण्यकश्यपु गदा लेकर भगवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। हिरण्यकश्यपु और नरसिंह देव दोनों धमाधार युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने देखा संध्या का समय हो गया। जैसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने का प्रयास किया, धरती फटने लगी, आकाश गरजने लगा, हिरण्यकश्यपु के मस्तक पर गीत डोलने लगे, हिरण्यकश्यपु के हाथ से गदा सरकने लगी। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाकर अपनी गोद में बिठाया, न अंदर न बाहर न ऊपर न नीचे। और उस समय भगवान नरसिंह देव अपने नाखून से हिरण्यकश्यपु की छाती को फाड़ दिए। बोले नरसिंह देव भगवान की जय। नरसिंह देव भगवान की जय। नरसिंह देव भगवान की
जय। तव कर कमलवरे नखम अद्भुत सिंगम ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवदीपा नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश
नरसिंहदेव को प्रार्थना कीजिए।
तव कर कमलवरे नखम अद्भुत सिंगम ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय
Thank you.
शक नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में यदि देखा जाए तो उस खंभे में भगवान नहीं थे, परंतु प्रहलाद ने कह दिया कि उस खंभे में भगवान है। भक्त के मुख से जो निकल गया भगवान उस बात को सत्य करते ही है, नहीं थे। प्रहलाद ने कहा है तो भगवान खंभे से भी प्रकट हो गए। ये तो अन्य अन्य अवतारों में भगवान माता पिता को स्वीकार करते हैं, परंतु इस अवतार में भगवान खंभे को ही अपना माता पिता बनाकर प्रकट हो गए और भगवान दिखा दिए। कुछ लोग अर्च विग्रह भगवान की मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं इस पत्थर में थोड़ी ना भगवान हो सकते हैं, परंतु नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने दिखा दिया यदि श्रद्धा है तो मैं खंभे से पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं। श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति हुई और उस राजसूय सभा में नारद मुनि ने चार वर्णों की महिमा, उनके कर्तव्य का वर्णन किया, मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, और उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और अंत में गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया। अब श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मन्वंतर की कथा सुना रहे हैं। मन्वंतर का अर्थ होता है 71 चतुर्युग तक एक मनु राज करता है, तो एक मन्वंतर में भगवान का एक अवतार होता है। भगवान के अवतार कई प्रकार के होते हैं, पुरुष अवतार, शक्त्यावेश अवतार, उनमें से एक है मन्वंतर अवतार। प्रत्येक मन्वंतर में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। तो मन्वंतर की कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र की कथा सुनाते हैं। किस प्रकार एक हाथी मगरमच्छ के मुख में फंस गया और जब वह मगरमच्छ उस हाथी को पकड़कर बीच तालाब में लेकर गया, वह गजेंद्र का केवल सिर बचा था, बस मरने ही वाला था, परंतु एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधीन मनोरिधि जजाप परमं जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम्। पिछले जन्म में उन्होंने कुछ श्लोक याद करके रखे थे, इसलिए इस जन्म में मरते समय वस्तुति याद आ गई और अंतिम समय में भगवान को स्तुति करने पर भगवान हरि गजेंद्र के पास आए और गजेंद्र की रक्षा की। तत्पश्चात चाक्षुष मन्वंतर की कथा का वर्णन करते हुए समुद्र मंथन की कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए और वैकुंठ में भगवान ने अपनी वैजंती माला दुर्वासा ऋषि के गले में पहनाई। देखिए माला की कितनी महिमा है, सबको सुन लेना चाहिए। भगवान श्री विष्णु ने अपनी फूल की माला दुर्वासा के गले में प्रसाद के रूप में पहनाई। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से वापस लौट रहे थे, उसी समय स्वर्ग के राजा इंद्र ऐरावत के ऊपर सवार होकर रास्ते में मिले, तो इंद्र ने ऊपर बैठे बैठे वांछा कल्पतरु किया। इंद्र का प्रणाम करने पर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और भगवान ने जो माला दी थी वह माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र तो धन और पद के मोह में इतना अहंकारी अभिमानी हो गया था, सोचा कि हम तो स्वर्ग के देवता सोने की, डायमंड की, मोतियों की माला पहनने वाले, ये फूल की माला क्या पहनकर करेंगे। तो तुरंत दुर्वासा के देखते देखते वो माला अपने गले से निकालकर हाथी के गले में डाल दी। ये तो पशु लोग के पहनने लायक। अब हाथी क्या जाने माला क्या होती है, हाथी तो अपने सिर से निकालकर अपने पांव के नीचे कुचल दिया और दुर्वासा जी देख रहे थे। दुर्वासा जी ने देखा कि भगवान का भी अपराध हुआ है और भगवान की माला का मेरा भी अपराध हुआ है। तुरंत दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम धन और पद की ऐश्वर्य में मोहित हो गए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जाओ। इंद्र श्रीहीन हो गए। इस कथा से हम सबको यह उपदेश ग्रहण करना चाहिए, जब कोई भक्त हमें यह माला पहनाते हैं तो यह साधारण माला नहीं होती है, ये भगवान का प्रसाद होता है। तो भगवान के इस प्रसाद को धारण करके रखना चाहिए, नेताओं की तरह पहनकर तुरंत निकाल नहीं देना चाहिए, नेताओं का स्वभाव होता है। इंद्र श्रीहीन हो गया, भगवान के पास विनय किया, भगवान ने समुद्र मंथन करने के लिए कहा, असुर और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन करके अमृत निकला। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया, देवता लोग शक्तिशाली हुए, असुरों के साथ युद्ध करके असुरों को हराकर देवताओं ने स्वर्ग प्राप्त कर लिया। परंतु स्वर्ग प्राप्त करके देवतागण भोग में फंस गए, और यहां शुक्राचार्य की कृपा से मृत संजीवनी विद्या जानते थे, सभी असुरों को जीवित किया और बलि महाराज को जीवित करके कहा कि हे बलि महाराज, मैंने आपको जीवित तो किया है, अब मैं आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ कराऊंगा और लीगली आपको स्वर्ग प्राप्त कराऊंगा। तो सबसे पहले यज्ञ कराया, ब्राह्मणों के यज्ञ से यज्ञ देवता प्रकट हुए, प्रकट होकर असुरों के राजा बलि महाराज को कवच दिए, घोड़े दिए, रथ प्रदान किए। साक्षात प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, विजय माला पहनाई और आशीर्वाद दिए। अब जिसके ऊपर प्रहलाद की कृपा हो और साक्षात प्रहलाद ने जो जिसको विजय माला पहनाए वो किससे हार सकता है। बलि महाराज अपना रथ लेकर देवताओं के ऊपर चढ़ाई किए और धमाधार युद्ध हुआ और सभी देवता स्वर्ग लोक छोड़कर भाग गए। इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गए और यहां बलि महाराज स्वर्ग के राजा हुए। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम राजा तो हुए हो, स्वर्ग के राजा युद्ध से हुए हो, वास्तविक लीगली यदि स्वर्ग के राजा बनना है तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करना होगा। बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और यहां अपने पुत्र इंद्र को स्वर्ग से विमुख देखकर, च्युत देखकर माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी से कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, आप मेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग वापस दिला दो। कश्यप जी ने कहा मैं तो नहीं कर सकता हूं, परंतु आपकी इच्छा भगवान विष्णु पूरी कर सकते हैं। अच्छा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं उसके लिए पयोव्रत करना होगा, 10 दिन का व्रत है, केवल पानी पीकर रहना है, क्षमा कीजिए केवल दूध पीकर, रोज 2 ब्राह्मण को भोजन कराना है, योग्य दक्षिणा देनी है और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम और भगवान की कथा सुननी है। यह सुनकर अदिति ने 10 दिन तक पयोव्रत का पालन किया और 10वें दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। कहा क्या चाहिए आपको? कहा मेरे पुत्र इंद्र इत्यादि देवता को बलि महाराज ने स्वर्ग से हटा दिया है, उसे स्वर्ग दिलाओ। भगवान ने कहा देखो, बलि महाराज को इस समय कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि बलि महाराज ने ब्राह्मणों की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले को कोई नहीं हरा सकता है। युद्ध करके तो बलि को कोई नहीं जीत सकता है, परंतु क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है इसलिए मैं साक्षात विष्णु भीख मांगकर बलि से स्वर्ग लेकर मैं तुम्हारे पुत्र को दूंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। इतना कह के भगवान अदिति के गर्भ में प्रकट हुए और अदिति के गर्भ से वह दिन बहुत करीब आया। कहते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर को 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन उपेंद्र प्रकट हुए। बोले भगवान वामन देव की, श्री वामन देव की। जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए वहां पर सूर्यदेव आए, सूर्यदेव ने गायत्री का आदेश उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपनी पवित्र जनेऊ प्रदान की, कश्यप जी ने मेखला प्रदान की, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, अदिति ने कोपिन प्रदान किया, देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षि ने कुश दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और जगत माता अन्नपूर्णा ने भगवान वामन को सर्वप्रथम सबसे पहली भिक्षा प्रदान की, दान दिया। जन्म से ही बहुत बड़े थे परंतु कद बहुत छोटा था, वैसे तो इसका नाम उपेंद्र था, इंद्र के छोटे भाई उप इंद्र, उपेंद्र नाम था, कद छोटा होने के कारण इसे वामन कहते थे। और किसी ने खबर दी कि प्रभु बलि महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं और बलि महाराज 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं, यदि बलि महाराज 100 अश्वमेघ यज्ञ कर देंगे तो इन सदा सदा के लिए वे स्वर्ग के राजा बन जाएंगे।
सभी भक्त नीचे बैठे रहेंगे, खड़ा नहीं होएगा, अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए।
इतना सुनकर भगवान वामन बलि महाराज से स्वर्ग प्राप्त करने के लिए निकले हैं और बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान वामन पधारे हैं। बलि महाराज शुक्राचार्य यज्ञ में बैठे हैं और भगवान वामन उस यज्ञ के बाहर खड़े हैं और एक दूत बलि महाराज के पास यह खबर लेकर आता है कि हे राजा, आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। सुरदास जी बहुत सुंदर गाते हैं,
राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी, राजाई पंडित पौरी तुम्हारी,
राजाई पंडित पौरी,
चारों बेर पढ़त मुख आगर,
चारों बेर पढ़त मुख आगर,
चारों
के पास आते हैं और बलि महाराज को कहते हैं, राजन आपके द्वार में एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी आया है, एक बाल ब्रह्मचारी आया है, कैसा है? कहते हैं चारों वेद पढ़त मुख आगर, चारों वेद उसके मुख पर है और हे बावन वपुधार, और बहुत छोटी कद वाले, छोटा सा बालक है।
अपद दुपद पशु भाषा बुझत है,
अपद दुपद पशु भाषा बुझत है,
अभिगत अलप हारी,
अभिगत अलप हारी।
हे बलि महाराज, अपद सुपद ये पक्षी की भाषा भी जानता है, मनुष्य की भाषा भी जानता है, सभी भाषा जानता है और बहुत संतोषी ब्राह्मण आया है, अल्प आहारी, बहुत कम भोजन करने वाला है और उसको देखकर
नगर सकल नर नारी मोहे,
नगर सकल
सारे जगत के नर नारी उसको देखकर मोहित हो रहे हैं,
नगर सकल नर नारी मोहे,
नगर
द्वारपाल ने ये कहा कि हे बलि महाराज, आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं और आपको मिलना चाहते हैं। तो बलि महाराज, यद्यपि शुक्राचार्य उसे यज्ञ करा रहे थे, परंतु उस यज्ञ को छोड़कर बलि महाराज खड़े हुए और उस बालक के पास धीरे धीरे आ रहे हैं।
सुनी सानंद चले बलि राजा,
यज्ञ को छोड़कर भगवान वामन के पास आते हैं और भगवान वामन को आसन के ऊपर बिठाते हैं। भगवान वामन बैठे हैं, बलि महाराज खड़े हैं। भगवान वामन को पूछते हैं कि हे बाल ब्रह्मचारी, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं।
जो मांगो सो दे हूं तुरंत ही, जो मांगो सो दे हूं तुरंत ही।
आप जो चाहिए मांग लो, मैं आपको तुरंत देने के लिए तैयार हूं। क्या हीरा हीरे चाहिए, रत्न चाहिए, रत्नों के भंडार चाहिए, क्या चाहिए?
जो मांगो सो दे हूं तुरंत ही, जो मांगो सो दे हूं तुरंत ही। हीरा रतन भंडारी, हीरा रतन भंडारी, रहू रहू राजा यो नहीं कही।
भगवान वामन ने कहा, बस राजा रुको रुको, ऐसा नहीं बोलते हैं। जब बलि महाराज ने कहा जो चाहिए वो मांग लो, भगवान ने कहा ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा बोलने से बहुत बड़ा दोष लगता है। मुझे न तो गहना चाहिए, न धन चाहिए, न रत्न चाहिए, न हीरा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको मुझे देना ही है तो भगवान मावन मांग रहे हैं।
दिन पे गसुदा दे मो को,
यदि आपको देना ही है तो तीन पैर भूमि दे दीजिए, तीन कदम भूमि दे दीजिए।
तीन पे
केवल भूमि चाहिए। बलि महाराज जब देने के लिए तैयार हुए, शुक्राचार्य दौड़कर आए और उसको रुका दिए।
शुक्र कहियो सुनी हो बलि राजा, शुक्र कहियो सुनी।
शुक्राचार्य ने कहा बलि महाराज रुको,
बलि
राजा रुको रुको
आए छल न मुरारी।
ये आपको छलने के लिए साक्षात मुरारी भगवान कृष्ण आए हैं।
पंडित पौरी तुम्हारी राजाई पंडित पौरी।
शुक्राचार्य ने कहा ये साक्षात विष्णु है, साक्षात मुरारी यहाँ पर आए हैं आपको चलने के लिए। तब बलि महाराज ने जो कहा है आज तक स्थिति आज में ऐसा किसी ने नहीं कहा।
कहीं दो शूत्र कहा अब कीजे,
जब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम इसकी बात में मत आना, तुम इनकी बातों में मत आना, ये साक्षात कृष्ण है, ये तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे, तुम्हारे तुम्हें भिखारी कर देंगे। तब बलि महाराज कहते हैं कि यदि ये कृष्ण है और मेरा सब कुछ लूट लेने के लिए आए हैं तो मैं भिखारी होने के लिए तैयार हूं।
कहीं दो शुक्र कहां अब कीजे,
हाथ में जल लेकर प्राण ले रहे हैं।
जल ही उदक दियो ले बलि राजा,
उदक दियो ले बलि राजा,
मावन दे अपसारी पंडित पौ
महाराज ने प्रण ले लिया। प्रभु शुक्राचार्य ना कहते रह गए, बारंबार शुक्राचार्य ना कह रहे हैं परंतु भगवान को देने के लिए बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्याग दिया। और कहते हैं कि आपको तीन कर्म भूमि चाहिए, मांग लो। अब धीरे धीरे भगवान रावण अपना शरीर विकराल करते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपना शरीर विकराल शरीर हो गया। एक कदम में भगवान रावण ने पृथ्वी के नीचे के लोगों को नाप लिया, दूसरे कदम में भगवान रावण ने ऊपर के लोग जनलोक मरलोक तीपलोक तपलोक पितलोक ब्रह्मलोक। अब भगवान रावण बलि महाराज को कह रहे हैं कि दो कदम में मैंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि महाराज अपना सिर झुकाकर कहते हैं कि प्रभु तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन तीसरा कदम बलि महाराज के सिर पर रखते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलि महाराज से स्वर्ग को भीख में मांग लिया। और बलि महाराज के समर्पण को देखकर भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति, उसमें आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बलि महाराज है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ प्रदान कर दी। ऐसे बलि महाराज के द्वारा उनकी पत्नी विंध्यावली के द्वारा बहुत सुंदर भगवान को स्तुति है। अंत में भगवान प्रसन्न होकर बलि महाराज से कहते हैं कि हे बलि महाराज, इस मनवंतर में इंद्र राजा रहेंगे, परंतु आने वाले मनवंतर में मेरी कृपा से तुम इंद्र बनोगे। बलि महाराज को इंद्र बनाने का वादा दिया और वर्तमान में बलि महाराज को सूतल लोक का राजा बनाया। और बलि महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं सूतल लोक में जा रहा हूं, सूतल लोक में आपकी भक्ति, आपके भक्तों का संग नहीं मिलेगा। तब भगवान श्री विष्णु ने बलि महाराज के ऊपर कृपा करके कहा कि तुम सूतल लोक में जा रहे हो और तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं सूतल लोक का द्वारपाल बनूंगा। बलि महाराज पर कृपा करके भगवान उनके द्वारपाल बने। इस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्त की कथा श्रीमद् भागवत में बताई गई है। और फिर अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी मत्स्य अवतार का वर्णन करते हैं, किस प्रकार भगवान मत्स्य अवतार धारण करके वेदों की रक्षा करते हैं, राजा सत्यव्रत को निमित्त बनाकर इस संसार में वेदों की रक्षा किए। और सत्यव्रत जी ने भगवान को बहुत सुंदर स्तुति की, जिसे शिवाचार्य स्वामी गुर्वाष्टकम कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंद समाप्त। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो आज यहाँ पर 8 स्कंद समाप्त हुए हैं। आप सब भक्त ध्यान से सुने, आने वाले कल भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य होने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जन्म लेने वाले हैं और कल पूरे दिन राम कथा होगी। तो राम भगवान के जन्म के अवसर में और उनकी कथा सुनने के लिए सब लोग यहाँ पर पधारे। और भगवान श्री रामचंद्र का जन्म है इसलिए सब लोग उत्साह के साथ और नए नए वस्त्र पहनकर आइए। कल राम जन्म है और परसों कृष्ण जन्म है। अब हमारी कथा में जो 2 दिन बचे हैं, ये 2 दिन में बहुत उत्साह है, आनंद है, क्योंकि यह दोनों दिन में भगवान के जन्म होंगे। कल राम जन्म, परसों कृष्ण जन्म, इसलिए ये दोनों दिन में उत्साह के साथ, हर्ष के साथ और नए नए वस्त्र पहनकर, भागवत में लिखा है यदि कोई व्यक्ति भगवान के जन्म महोत्सव में नए वस्त्र पहनकर कथा सुनता है तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो आनंद उत्साह हर्ष के साथ यहाँ पर पधारे और भगवत कथा का लाभ लीजिए। हरे कृष्ण।